This episode of VoiceOver Par Charcha is powered by VoicesBazaar.com, India's premium audio agency.
So welcome to another episode of VoiceOver Par Charcha. In this special episode, we have a very senior, professional, seasoned, legendary voice artist who has lent his voice to more than thousands of commercial advertisements, documentaries, and it is countless. The list is too big. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have the one and only Mr. Surjan Singh on VoiceOver Par Charcha, who has more than 2 decades of experience. So sir, bahut bahut dhanyawad aapka is show par aane ke liye aur aapka hardik swagat hai VoiceOver Par Charcha mein.
Thank you so much aur itna joshila vivadan kiya aapne. Thank you so much for this. This was wonderful. And no, thank you so much. And sabhi logon ko bahut sara pyar. Thank you.
Bilkul sir. Aur sabse pehle main hamesha, whenever we start the episode, main hamesha field mein jo ek hisab se jo entry point hota hai, jahan tak sir main aapke bare mein janta hoon, aapke case mein voicing ka dur dur tak nata nahi tha. मतलब थ्रू जैसे कह सकते हैं ना फैमिली का जैसे एक बैकग्राउंड होता है या कहीं ऐसे प्लान होता है कि मुझे वॉइसिंग में जाना है, आपके केस में वो नहीं था. और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपने कई जगह पे हम जैसे मैं सुन चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा एक छोटा सा उस पर एक इस पर हम छोटी सी चर्चा कर सकते हैं अभी. डू स्टार्ट ऑफ द एपिसोड.
ओके, नो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी. मैं ऐसे कहता हूँ, वेल इट्स ऑल फेट कंप्लाई, जो हो गया है और फेट कंप्लीट. लेकिन थैंक्स सो मच फॉर आस्किंग दिस. बट जिस जेनरेशन से, अब मैं वर्ड जेनरेशन यूज करने लगा हूँ क्योंकि मुझे 20 साल काम करते हुए हो गए, तो जिस दौरान हम लोग कर रहे थे और काम शुरू कर रहे थे, उस समय नोबडी एवर ड्रेम्ड और नोबडी एवर थॉट दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ वॉइस एक्टर. वॉइस एक्टिंग नाम की कोई इंडस्ट्री नहीं थी. एग्जिस्ट करती थी लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं थे.
Yes.
क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने आप में एक कॉन्क्रीट फॉर्म लेती है मिड 90s एंड अर्ली 2000s में. सो उस टाइम पर बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी उठ करके ये कहता था कि मुझे वॉइस एक्टर बनना है, या उसका एक ड्रीम था कि मुझे वॉइस एक्टर बनना है. हाँ, उसको एक्टर बनना था. वो थिएटर में जा सकता था, वो फिल्मों में जा सकता था, वो सिनेमा, वो टीवी में जा सकता था, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता था कि मुझे वॉइस एक्टिंग करनी है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ और इस तरह का करियर ऐसा नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता हो. बट मेरा भी इत्तेफाक ऐसे ही हुआ, बाय एक्सीडेंट, जैसे बाकी, मेरे ख्याल से मेरी इंडस्ट्री में और मेरे जानकारी में बाकी सभी लोगों का हुआ. हाँ, ये जरूर था कि बीइंग इन दिल्ली, दिल्ली में एक चीज एग्जिस्ट करती थी जिसे हम रेडियो अनाउंसर्स कहते थे, क्योंकि दिल्ली में विविध भारती और रेडियो स्टेशंस का बड़ा बोलबाला था.
ऑल इंडिया
दूरदर्शन. एग्जैक्टली, हाँ, दूरदर्शन था. तो जो लोगों की आवाज के साथ पहचान थी या जो भी उनके साथ जो उनको नॉलेज थी उसके बारे में, वो लिमिटेड थी. नॉट एज एन आरजे बट एज अ प्रेजेंटर, एज अ ब्रॉडकास्टर, इस तरह की चीज दिल्ली में बहुत एग्जिस्ट करती थी, जो मुंबई में भी एग्जिस्ट करती थी एट सम पॉइंट, एट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लेकिन और वहीं से शुरू हुआ जब ये FM और इनका दौर जब शुरू हुआ. प्राइवेट FM से भी पहले गवर्नमेंट FM ने कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू कर दिए थे लेट 90s में. एंड ऑफ कोर्स विद 2003 जो एक FM का वो हुआ, उसके बाद से एक RJ कल्चर पूरा आ गया. तो उस दौरान, तो ये पूरी बैक स्टोरी इससे मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि उस दौरान मैं मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में. मैं तो सिंपल, जैसे सब निकलते हैं, सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज करना चाहता था मैं. आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर और एन IPS.
गवर्नमेंट जॉब, राइट, काइंड ऑफ.
या सो मेरे फादर, नो, एग्जैक्टली, नॉट गवर्नमेंट जॉब. आई वाज, यस, सो नॉट अ गवर्नमेंट जॉब. नेवर वांटेड अ गवर्नमेंट जॉब. आई वाज वेरी स्पेसिफिक दैट आई वांटेड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट.
ओके,
इफ नॉट अ सिविल सर्वेंट, नो, आई वुडंट हैव टेकन अप एनी गवर्नमेंट जॉब. एंड एज लक वुड हैव इट, आप जानते हो इसकी तैयारी में बहुत समय लगता है.
बहुत
एक अटेम्प्ट मैंने छोड़ा भी, और तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे कोई 5-6 साल लग गए. सो इट वॉज इन 2004-05 दैट आई स्टार्टेड डैबलिंग विद वॉइस एक्टिंग. एंड वॉइस एक्टिंग भी ऐसा नहीं था, मैं एक्चुअली ऑडिशन करने गया था ऑल इंडिया रेडियो में, जहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था इंग्लिश हिंदी दोनों में. और लेकिन मैंने वहां कभी ड्यूटीज नहीं की, क्योंकि मुझे पहली जो ड्यूटी थी जो शिफ्ट मिली थी वही ग्रेवयार्ड शिफ्ट थी। तो लेकिन मैंने उसको परस्यू किया नहीं। ये हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसको छोड़ा और वहां ये, और पैरेलली कुछ ऑडिशंस हो रहे थे उसी दौरान, मुझे पता लगा कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं। यूटीवी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था,
यूटीवी
जिनका हंगामा चैनल था, जहां से शिनचैन और कोची कामे कित्रेत्सु और इतने लेजेंडरी जापानीज कार्टून शुरू हुए, तो वो दिल्ली में होता था। एंड वी यूज्ड टू पंचशील में स्टूडियो होते थे, एंड दे वर लाइक 5-6 स्टूडियोज उनके अपने थे, एंड दे हैड हायर्ड अनदर 5-6 मोर स्टूडियोज। सो वी हैड प्लेंटी ऑफ वेरी क्वालिफाइड, वेरी नाइस डायरेक्टर्स, वेरी गुड इंजीनियर्स, जिन लोगों से हमने बहुत सीखा। तो वहां से मैंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, एंड इंसिडेंटली उसी टाइम पर हिस्ट्री चैनल लॉन्च हो रहा था, हिस्ट्री चैनल। सो आज हिस्ट्री चैनल हालांकि मुंबई में होता है काफी हद तक उनके एपिसोड्स, लेकिन उस समय सारे चैनल दिल्ली से होते थे। तो इट वाज आई रिमेम्बर एक चैनल एफएक्स भी आया था, उसके बाद फॉक्स ट्रैवलर नाम का एक चैनल, एनडीटीवी ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स की गुड टाइम्स की डबिंग कराई हिंदी में, जो काफी साल चली है और शायद अभी भी चल रही होगी। तो यहां से मेरा एक फेज शुरू हुआ जो डबिंग के साथ। सो एंड डबिंग के साथ ही पैरेलली हमारे यहाँ बहुत गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स का बड़ा कल्चर था दिल्ली में, तो मैं वो भी करने लगा। कुछ कमर्शियल रेडियो स्पॉट्स बहुत चलते थे, तो मैं, मेरा नाम किसी ने आगे सजेस्ट किया, तो वर्ड ऑफ माउथ किसी ने कहा कि भाई ये कर लो, एंड आई हैड अ वेरी यंगिश वॉइस, और उस समय यंग वॉइसेस की शायद काफी डिमांड थी। सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम वेरी नाइस पीपल, वेरी गुड पीपल इन द इंडस्ट्री। सो थैंकफुली आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड टाइम। इट वॉज दोज डेज जहां हम स्टूडियोज में जाया करते थे। आज आप जहां देख रहे हो, दिस इज माई ओन पर्सनल स्पेस एंड होम स्टूडियो।
अब तो सर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की घर से हम एक अच्छा आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं।
Exactly.
स्टूडियोज में अपने अलग न्यूएंसेस होते हैं साउंड इंजीनियर, बट फिर भी हम घर से एक अच्छा डिसेंट क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं आराम से।
Oh yes, why not? I mean, and I always say that you should invest in good gears, you should invest in a good quality mic, you should invest in a good space and good acoustics. मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं घर से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, पहली कोशिश ये करिए कि अगर आप स्टूडियो से रिकॉर्ड करें, अगर आप ये चूज करते हैं, यू चूज टू रिकॉर्ड इट फ्रॉम योर होम, देन यू शुड बी एबल टू गिव अ क्वालिटी एटलीस्ट व्हाट यू वुड हैव रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो, इफ नॉट बेटर।
यस,
सो यू शुड इन्वेस्ट, एवरी वॉइस एक्टर शुड इन्वेस्ट इन अ गुड इक्विपमेंट।
मैं हमेशा कभी अपने, जैसे कभी कभी वीलॉग्स या वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं हमेशा एग्जांपल यूज करता हूँ कि जैसे मुझे काफी बार पूछा कि माइक लेना क्या जरूरी है, मतलब ऐसी कमेंट रैंडम आया था, तो मैंने तो हमेशा यही जवाब दिया है कि एग्जांपल लेता हूँ मैं क्रिकेट के साथ, कि बैट्समैन कितना अच्छे से अच्छा हो, लेकिन अगर उसके पास प्लास्टिक का बैट होगा तो ही कैन नॉट बिकम अ बैट्समैन। तो यहाँ पे स्किल और टैलेंट, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी मैटर करती है और क्राफ्ट भी मैटर करता है, दोनों का, दोनों की जुगलबंदी सही होगी तो फिर काम आगे
बढ़ेगा। कुछ भी करके आप भेज दे रहे हैं, हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत कुछ आज की तारीख में क्लीन हो जाता है, बट आई स्टिल बिलीव ओल्ड स्कूल की रॉ मटेरियल जितना ज्यादा क्लीन और अच्छा जाए, अच्छी क्वालिटी का जाए, उतना अच्छा रहता है।
मतलब जैसे सर नो डाउट, जैसे मोबाइल से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वो जो माइक्रोफोन और जो प्रॉपर आप एक अकूस्टिक्स वगैरह के साथ जो दे सकते हो आउटपुट, वो आई थिंक तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है, काफी चीजें हुई है, बट फिर भी वो माइक्रोफोन का काम।
बिगिनर्स के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि हमें वॉइस एक्टर बनना है या नहीं बनना है,
यस,
तो और वो अभी भी, और या प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी, तो मैं कहता हूँ ये भी ना करें कि आप वेट करें कि अच्छा मैं एक दिन माइक लूंगा, मैं खूब सारे यूट्यूब वीडियोस देख लूंगा, और पहले मैं देखूंगा कौन सा सबसे अच्छा माइक है, फिर देखूंगा कौन सबसे अच्छा केबल कौन सा है, फिर देखूंगा सबसे अच्छा साउंड कार्ड कौन सा है, उसमें मैं 2-3 महीने लगा दूंगा। अरे ये तो हो, नो, आई जस्ट बिलीव उस मामले में फोन इज अ वेरी गुड डिवाइस, वो आपको कम से कम इतना कर सकता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करें और आप प्लेबैक करके सुन लें कि आपके फंबल्स कहाँ आ रहे हैं, आपके पॉजेस करेक्ट हैं या नहीं, आपकी आप जो फील करना चाहते हो सही है या नहीं, तो उस मामले में ये चीज बहुत अच्छी है एंड आई थिंक उस मामले में उसको यूज करना चाहिए. लेकिन नेवर एवर मैं अपने सैंपल्स भी व्हाट्सएप पे नहीं, इस पर व्हाट्सएप या फोन से रिकॉर्ड करके कभी भेजता.
राइट राइट. सो सर, आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ पे एक समय जब आपने बात की, जब आपकी शुरुआत हुई थी, तब पहले तो अवेयरनेस नहीं थी इतनी वॉइस इंडस्ट्री का, हिसाब से कोई स्ट्रक्चर, मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती थी, उसमें अनाउंसर वगैरह रेडियोस का एक पार्ट, मतलब अलग अलग चीजें थी. आज के समय में इंटरनेट के दौर पे अवेयरनेस, मतलब इंफॉर्मेशन जो है दैट इज मतलब इट्स यू आर जस्ट अ क्लिक अवे. आप कुछ सर्च करते हो, आपके सामने इंफॉर्मेशन हाजिर है, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो. उसमें सीखना एंड डिसाइडिंग द राइट कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वन. नंबर टू, बहुत सारे ये लोगों के मिसकंसेप्शन भी होते हैं वॉइसिंग के बारे में कि अच्छा आवाज बहुत भारी है तो मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओगे, ऐसे कई मिसकंसेप्शन होते हैं. इसके बारे में आप अपनी क्या अपनी राय रखना चाहेंगे, अपना जो अपनी बात रखना चाहेंगे इस चीज में?
ओके, तो आपने दो चीजों में हम डिवाइड कर लेते हैं. पहला आपने सवाल किया कि कोच एज अ कोच या फिर आप अगर सीखना चाहते हैं, और दूसरा आप कह रखते हैं कि अगर क्या वॉइस कैसी होनी चाहिए. Yes. या वॉइस का टेम्बर कितना इम्पोर्टेंट है. ओके, तो इनको पहले हम ये कर लेते हैं कि ओके, सीखना कितना इम्पोर्टेंट है. देखिए, जब हम शुरुआत कर रहे थे ना, तो हमने सीखने में बहुत सारी गलतियां की. उन गलतियों से कुछ गलतियां मैं बताता हूं कैसी होती हैं. जब आप आधे पके होते हैं, कच्चे होते हैं, और आप जिस क्लाइंट के सामने गए, उसने आपसे काम तो करा लिया, शायद वो बहुत शरीफ था, वो आपके मुंह पर उसने कुछ बोला नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद आपकी वॉइस को हटा के उसने किसी और से करा लिया बाद में. लेकिन उसके दिमाग में अब ये हो गया कि इस बंदे के साथ मैं अपना समय नहीं खराब करूं.
Yes, true.
तो ये हुआ होगा मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं पता. हो सकता है आज अब 20 साल बाद भी अगर वो आदमी मेरा नाम सुने तो कहे अरे नहीं यार, वो he's not fit. मैंने कराया हुआ है यार, मैंने बहुत पहले कराया हुआ है, 15-20 साल पहले. ये ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज हाउ इट वर्क्स. दूसरी चीज, टू लर्न द रोप्स, टू लर्न द होल क्राफ्ट. मैं कहूंगा शायद मुझे किसी एक ऐसे मुकाम पर आने में जहां की मैं ये कह सकूं और कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि मैं इतना चार्ज कर सकता हूं या मार्केट में मेरी ये कैपेबिलिटी है, शायद मुझे 4-5 साल या 6 साल जरूर लगे. मैं आपको डिसहार्टन नहीं कर रहा हूं, आपने डिजिटल एज में शुरू किया है तो वो चीजें बहुत तेज आप सीखोगे, लेकिन 4-5 साल का वक्त बहुत होता है. इफ यू आर 23 एंड यू बिकम लाइक 26-28 और तब जाके आपको ये चीज समझ आ रही है, तो जो कोच होता है ना, वो शायद आपको उस प्रोसेस को थोड़ा सा क्विकन कर सकता है. मैं ये नहीं कहता हूं कि उस प्रोसेस को जीरो पर ले आएगा, नहीं, वो स्ट्रगल और वो मेहनत वो आप ही की है, लेकिन सही डायरेक्शन में आप अगर चीजें कर रहे होंगे तो आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाएंगे.
राइट.
दूसरी चीज, आपको किस तरह से लोगों के साथ नेगोशिएट करना है, किस तरह से अपनी, देखिए आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस एट द एंड, व्हेन यू आर लर्निंग योर वॉइस, आप अपना एक मार्केट प्लेस बना रहे हो, अपना प्रोडक्ट है आपका वॉइस, ठीक है, उसको कैसे आप मार्केट में प्लेस करते हो, अगर वो आपने सीख लिया, अगर पहले से सीख कर आए हो, तो आप बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स पहले से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बशर्ते वो क्वालिफाइड हो, पीपल हु जिन्होंने अपना समय उस फील्ड में दिया हो, और जैसे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं, वी हैव माई सेल्फ एंड विद माई को फाउंडर शुभ शंकर चैटर्जी इज अ वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी नाइस वॉइस एक्टर हिमसेल्फ, और उनकी स्टोरी भी अपने आप में अमेजिंग है, कमाल की है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए, और बिल्कुल एक पढ़ाई लिखाई से जर्नलिज्म में गए और 20 साल उन्होंने जर्नलिज्म को दिए, टाइम्स नाउ, वायकॉम, और उसके बाद वन फाइन डे वो डिसाइड करते हैं कि भैया मुझे नहीं करना है, मुझे तो वॉइस एक्टर बनना है। और हम भी मिले, हमने बातचीत की, एंड बिलीव मी ही एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग अ लिविंग ऑफ वॉइस ओवर्स। लेकिन उन्होंने मेहनत की, उस पूरे प्रोसेस में मेहनत की, लेकिन उन्हें बहुत लंबा वक्त नहीं लगा फिर। तो वो सीखते गए। कभी मैंने किसी से कहा कि आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, वो सबसे मिलते रहे, बात करते रहे। तो दैट्स व्हेन ही केम अप विद द आइडिया। ही सेड इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया में स्पेसिफिकली इस तरह के कोचेज नहीं है जो आपको एग्जैक्टली एक गाइडेंस दे पाए कि आप ऐसे कीजिए। ज्यादातर कोचेस के साथ या ज्यादातर लोग जो करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ये कहते हैं वो तोता मैना की आवाज निकालेंगे, कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालेंगे, अलग अलग तरह की आवाज निकालेंगे, और वो कहेंगे देखो अब आप अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या अगर आप सामने वाला स्टूडेंट है, वो मुझे देख करके बिल्कुल ओवरवेलम हो जाएगा। ओ माई गॉड, आई पुट द मनी एट द राइट प्लेस, वाओ, आई एम लर्निंग फ्रॉम समबडी लाइक दिस, दैट्स ओके, बट व्हाट इज इट डूइंग टू यू? हाउ वो रजिस्टर्स आपके पास है, वो रजिस्टर्स आपकी कैपेबिलिटी क्या है? फॉर ऑल यू नो, अगर आप मिमिक्री नहीं करना चाहते, मैं बहुत अच्छी मिमिक्री करके आपको पूरी क्लासेस दे रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन आप में नहीं है ना, आप करना चाहते हैं ना, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, ना वो आपकी स्ट्रेंथ है। सो कोच विल आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, कोच विल आइडेंटिफाई आपके लैकुने क्या है, कौन सी चीज है जिनको हम पॉलिश कर सकते हैं। अब अगर एक स्क्रिप्ट आई और मैंने आपसे कहा कि चलो इसमें एक हम कैरेक्टर करते हैं, और मैं आपसे कहने लगूं कि नहीं देखो इसका कैरेक्टर ऐसे बोलेगा, ऐसे ही क्यों बोलेगा कैरेक्टर? आपकी आप जब वॉइस करते हैं तो अपने हिसाब से अपना कुछ एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं ना। तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ, अपनी सेंसिबिलिटी, उन सबको उसमें डालते हैं। द मोमेंट जब आप स्क्रिप्ट लेते हैं तो जितनी वो मेरी है उतनी वो आपकी हो जाती है, ठीक है? तो जब स्क्रिप्ट वो आपने ओन कर ली, तो अब जब वो मेरी हो गई है तो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी सेंसिबिलिटी, जो मैंने आज तक समझा है, जो सीखा है, वो मैं उसमें डालूंगा। मैं आपसे ये क्यों कहूं कि नहीं ये ऐसे बोलो? इफ आई देन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, एंड देन आई एम सेइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज डू एज आई से, मेरी तरह बोलो। नाउ देयर इज ऑलरेडी वन, तो उसका क्लोन क्यों बनाना? तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में देखना। ये है कि आप फेलियर से अपने आप को कैसे निकाल पाते। वॉइस एक्टिंग इज अ, मैंने एक जगह शायद मैं किसी से बात करते हुए मैंने उनसे कहा था कि ये बड़ा लोनली काम है, लोनली प्रोफेशन है। लोनली इसलिए नहीं कि आप अकेले और उसमें हो जाते हैं, नहीं, लोनली इसलिए कि आप ये डेलीगेट नहीं कर सकते किसी और को। द फर्स्ट कॉल दैट कम्स फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे, फिल्म मेकर ने कहा मुझे ये रिकॉर्डिंग आपकी चाहिए, वॉइस ओवर चाहिए, तो आपका पहला डिस्कशन वो उससे है, कोई और इसमें हेल्प नहीं कर सकता आपकी। आप अगर उसको अपनी फी बताना चाहते हैं तो वो तो भी आप ही को अपने एक्सपीरियंस से देखना पड़ेगा, मुझे फी कितनी बतानी चाहिए,
कितना चार्ज करना चाहिए,
कितना है, कम या ज्यादा तो नहीं। उसके बाद वो काम आता है आपके पास, समय निर्धारित करना है, मैं इतने बजे करूंगा, इतने बजे करूंगा, इतनी देर में करूंगा। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं, कोई करेक्शन है, तो भी मैं ही करूंगा, चाहे मैं मॉल गया हूं, चाहे मैं किसी की शादी में हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, ये हमारी लाइफ है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें वो खत्म करके देना होता है, क्योंकि उसके लिए फिल्म मेकर के साथ मेरा ये बॉन्ड है, ये कमिटमेंट है। उसके बाद हम जब लास्ट में आते हैं तो इनवॉइसिंग पे आते हैं, तो हम जब काम खत्म कर लेते हैं तो उसको उससे बात करना कि भाई कब होगा। अब हिंदुस्तान में ऐसे कम लोग हैं जो आपको पलट के आके कहते हैं कि भाई रेज कर दो, है बहुत सारे,
बहुत सारे ऐसे भी
हैं। The best part is this is a great industry to be in.
Yes.
लेकिन कितने लोग होते हैं ऐसे? तो वो जो नहीं है, जिनको भूल गए, तो आप उनको पूछिए कि भाई कब होगा, वो उनके डेटा मंगवाइए, फिर उसको इनवॉइस बनाइए, फिर हाँ यहाँ इसके बाद आप हेल्प अपने अकाउंट्स की ले सकते हैं, अकाउंटेंट की, भाई आप अकाउंट्स को शेयर कर दें। तो यहां तक का जो पूरा प्रोफेशन है, वो जो पूरा समय है, ये लोनली है, ये आपका अपना
राइट,
इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये हमें बहुत सुनने को मिलता है कि और ये आपको भी सुनने को मिलता होगा कि भाई यार बहुत बिजी रहते हो, यार वो तो बहुत बिजी रहता है, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है. वेल दिस इज द वे इट इज. जो इस प्रोफेशन को कर रहा है और जो आपके बिल्कुल सबसे करीबी हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, वही ये जानते होंगे कि ये काम कैसे होता है और उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होता है. क्योंकि उस 20 मिनट या 30 मिनट में, एक मिनट में, घंटे में जो आप रिकॉर्डिंग को दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे होते हैं आप उसको.
एब्सोल्युटली
ठीक है. तो ये कॉन्वर्सेशन वहां चला गया. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज द कि जो मैंने शुभोशंकर और मैंने हमने शुरू किया था, इट्स कॉल्ड द वॉइस प्रोजेक्ट. और इसमें यही था कि हम वी वांटेड टू हैव पीपल हैव अ कम्युनिटी, बेसिकली जस्ट अ कम्युनिटी, कि आपसे हैंड होल्डिंग रहेगी कि भाई आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम बताएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं. क्योंकि पहले स्टूडियोज होते थे जहां आप कहीं भी जा सकते थे. स्टूडियोज आज भी मौजूद होते हैं लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए जाना. कोई एक छोटे से कस्बे में है, कोई छोटे से शहर में है, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो उनको अगर हेल्प चाहिए वो कैसे आएंगे. कोई कर्नाटका में है या कोई महाराष्ट्र में है, तो वो कोई हाउ डज ही रीच, हाउ ही और शी, हाउ डज ही दे नो कि हमें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. तो आप वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उसे क्विकन कर सकते हैं. अगर आपने उनको सही गाइडेंस दी तो आप उनको वो चीज को क्विकन कर सकते हैं. द सेकेंड बिट जो आपने पूछा था कि द काइंड ऑफ वॉइस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर वॉइस राउंडेड हो और अच्छी हो और सूदिंग हो तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है,
थोड़ी आसान हो जाती है, राइट.
लेकिन अगर आप ये कहो कि यही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता. किसी भी किस्म की आवाज, एज लॉन्ग एज वो इंसानी गले से निकली है, देयर आर टेकर्स फॉर इट. क्योंकि कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी लोग बोले, अगर वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंसानी गले से निकली हुई,
इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ही बहुत अच्छा लगता है
बस, हाँ. तो इंसान के गले से निकली हुई आवाज कुछ भी हो, वो किसी भी तरह की हो, अब देखना यह है कि आप उसकी रेंज कितनी बढ़ाते हैं. क्योंकि अब गला जो है आपका तो इंस्ट्रूमेंट ही है ना,
कितना वर्सेटाइल,
करेक्ट. आप उससे जितनी वर्सेटिलिटी ले आएंगे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे कि अरे विजय राज तो बड़े अच्छे वॉइस एक्टर है, या इरफान साहब बड़े अच्छे वॉइस एक्टर थे. देखिए वो आवाज देते थे लेकिन वो वॉइस एक्टर्स नहीं थे. वॉइस एक्टर से मेरा मतलब वॉइस आर्टिस्ट नहीं थे. मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं. वॉइस आर्टिस्ट से मतलब वो अपना लहजा ढूंढते थे, अपने लहजे में बोलते थे, अपना स्टाइल देते थे. ठीक है कि मैंने ये स्क्रिप्ट है, मैं ऐसे ही बोलूंगा. कि अगर विजय राज साहब बोलेंगे तो वो कहेंगे अरे छोटी से चंदन घिसवाएंगी, अरे देवी जी जब पहले से ही मालूम था तो करवा लिया होता, क्यों किया.
Oh my God.
अब किराएदारों को रखवाएंगी और ऐसे करवाएंगी मकान मालिक के साथ, तो ये झगड़े तो होते ही रहेंगे. वो
परफेक्ट.
हाँ अब आप उनसे कहिए कि नहीं विजय राज साहब आप ना इसको ऐसे कर दीजिए कि छोटी से चंदन घिसवाएंगी, ऐसा करेंगी और वैसा करेंगी, मकान मालिक किराएदार, ये चाहिए मुझे. यू गोइंग टू द रॉन्ग पर्सन. ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज देयर. उनका एक अंदाज है
बोलने का
स्टाइल है. तो वो कहते हैं मैं एक्टर हूं, इफ देर आर टेकर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ वॉइस, गो अहेड, आप ले लीजिए. ठीक है लेकिन मैं और किसी तरीके से नहीं बोलूंगा. लेकिन वॉइस एक्टर को, वॉइस आर्टिस्ट को हर तरीके से बोलना आना चाहिए, अगर वो उसे अपना बिजनेस बनाना चाहता है, अगर वो उसे अपनी रोजी रोटी बनाना चाहता है. ठीक है अगर आपको कोई एक्टर या किसी जोन में आपको जाने के लिए कह रहा है, तो आप भले ही उसकी मिमिक्री ना करते हो लेकिन उस जोन को समझना जरूरी है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उसने उस हिसाब से लिखी थी. तो कम से कम उस जोन में चले जाइए. जरूरी नहीं है कि आप, मैं ये कहूंगी भाई विजय राज ऐसे ही होगा तो आप, लेकिन तो उस चीज को समझिए, कि समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है वो, कि रिलैक्स्ड, नेक्स्ट डोर एंड वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ, इस तरह की आवाज चाहिए. तो अगर उसको नहीं कर पा रहे तो उस जोन में आ जाइए. ये तो वॉइस एक्टिंग करेगा ना, ये तो वॉइस एक्टर को करना होगा ना, यही तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, यही तो एक्टर चाहता है और यही फिल्म मेकर चाहता है।
मतलब सर इसमें खास करके मैं ओवरऑल वॉइसिंग की बात करूँ, डबिंग, वॉइस एक्टिंग, पहले ऐसा लगता था व्हेन जब हम प्रोफेशन में आते हैं हमें थोड़े हमारे यू नो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि अच्छा वॉइसिंग आवाज और माइक्रोफोन का खेल है, अब मैं माई मॉड्यूलेशन वगैरह एक्सप्रेशन देना और सब काम हो जाएगा। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड। एडवर्टाइजिंग, डॉक्यूमेंट्री, ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अलग किरदार हो गया। एडवर्टाइजिंग में भी कितने टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिकली बात करें जाए अगर कोई जैसे डबिंग, वॉइस एक्टिंग, वहाँ पे थोड़ा कैरेक्टर वॉइसेस वगैरह मॉड्यूलेशन वगैरह आ जाता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग में आपका इतना एक हर आपका तो काफ़ी जॉनरस में एक बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा है, बट खास करके एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों का जैसे एक होता ना कि अच्छा एक्साइटमेंट से पढ़ेंगे तो चलो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या किन पॉइंट्स पे तवज्जो देना चाहेंगे कि एक एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट को?
दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इसमें ना दो बातें हैं, मैं दो लेवल पर ये डिस्कशन करना चाहता हूँ, पहला आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं दूसरा एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल क्लाइंट्स से है, इसमें थोड़ा सा दोष मैं एजेंसी को भी रखता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी एजेंसीज की थी जिसे वो पूरी तरह से निभा नहीं पाए, और इसमें मैं उनको पूरी तरह से ब्लेम इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आफ्टर ऑल वो डिपेंडेंट थे क्लाइंट्स के ऊपर, क्लाइंट्स के एक साथ उनकी एक सर्टेन रिटेनरशिप होती है। सो मैं जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं मैं उनको बता देता हूं कि क्या तीन मेन स्तंभ कौन कौन से हैं। क्लाइंट वो होता है जो जिसे अपना कैंपेन बनाना है, तो जिसे आप सैमसंग, LG या कोई भी आप FMCG ब्रांड या कुछ भी आप समझ सकते हैं, सोनी, व्हाटएवर, जो भी आपके दिमाग में, वो क्लाइंट है क्योंकि उसे अपना एक एड बनवाना है। उनके पास एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज जो कि एक रिटेनरशिप पर होती हैं। एजेंसीज का रोल ट्रेडिशनली हमेशा से ये रहा कि ये डिसाइड करना कि ब्रांड का कैंपेन कैसा होगा, ब्रांड का फील, लुक कैसा होगा, उसकी पोजिशनिंग कैसी होगी, जिसमें एक दोनों के साथ एक कॉमन चीजें शेयर होती थी। और तीसरा रोल आता था प्रोडक्शन हाउसेस का, प्रोडक्शन हाउसेस एंड देन स्टूडियोज को मैं एक ही बकेट में इस वक्त डाल देता हूं। प्रोडक्शन हाउसेस का काम था उस काम को एग्जीक्यूट करवाना। तो एक नटशेल में ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक आटे का ब्रांड है, तो उसने कहा मुझे एक एड चाहिए, तो एजेंसी कहती है कि भाई इसमें अच्छा इस एड में हम ऐसा करते हैं, एक बच्चे को ले लेते हैं, गृहिणी को ले लेते हैं, पिता को ले लेते हैं, परिवार दिखाते हैं, तो ये चीज हम करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये पोजीशनिंग मेरे लिए ठीक है, और उस पोजीशनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस बीच में आता था, और वो प्रोडक्शन हाउस जनरली हायर करता है कि भाई मैं किस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि और क्या होती है जो मैं देखता हूं, जितने भी एड्स, रेडियो एड्स से मैं शुरू करूंगा, रेडियो एड्स जितने भी हैं जो ज्यादातर FM चैनल्स बनाते हैं, जो आजकल खुद ही बना रहे हैं, जो पहले प्रोड्यूस हुआ करते थे, वो बिल्कुल आम ऑडियंस से कटे हुए हैं। आम ऑडियंस जैसे एड्स का प्रोजेक्शन ऐसा बन गया है कि एज इफ इट इज गोइंग आउट टू अ मास, लोगों तक जा रहा है, जबकि आप और मैं हम सब जानते हैं वो जो रेडियो है वो उसे एक इंसान सुन रहा है, एक इंसान मान के चलते हैं। जब आप एक आरजे भी होता है तो आरजे जब सामने वाले से बात करता है तो वो एक इंसान से बात करता है, एक इंसान को एड्रेस करता है, ना कि वो लोगों को एड्रेस करता है। तो दोनों के बात करने का लहजा कैसा होगा? जब मैं लोगों से बात करूंगा, जब मैं मैस ऑडियंस से बात करूंगा, लोगों से, दुनिया से बात करूंगा, तो मैं कहूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा होगा। ये होता है मैस ऑडियंस, मैस से रीच आउट करने का तरीका। लेकिन जब आप एक इंसान से करते हैं, जब रीच आउट करते हैं, तो उससे कैसे बात करते हैं कि आप कैसे हैं और क्या हो रहा है? अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं कि यार मुझे ना फलानी जगह जाना है, अरे यार मैं कहता हूं आप वहां जाओ, उस जगह जाओ, सबसे बढ़िया जगह मिलेगी आपको। और क्या चाहिए आपको? आप कहते हैं नहीं यार मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है, मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो, आप उस जगह जाओ, मेरे दोस्त ने ली थी भाई साहब, सबसे बढ़िया है, नाउ दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग, ये है जो कॉन्वर्सेशन होगा. लेकिन हमारा कॉन्वर्सेशन कैसा हो चुका है रेडियोज में, ऑफिस की सेटिंग. मान लीजिए ऑफिस में तीन लोग बैठे और कैसा है क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ, और दूसरी चीज हमें सब कुछ 20 सेकंड में खत्म करना है. तो चलो समय मुझे समझ में आता है कि चलो आपको 20 सेकंड में खत्म करना है, एक एड का पैसे का एक दायरा है, फाइनेंस भी देखना होता है, आपको 20 सेकंड का समय आपके पास. और कैसा चल रहा है? अरे बस क्या बताऊं, मेरे पास एक मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है. अरे तो आज ही चलना मारुति के या महिंद्रा के या इस शोरूम पर चलना, और वहां जाके तुझे मिलेगी ये सबसे अच्छी गाड़ी, ठीक है. और उसके बाद पीछे एक धड़धड़ाता हुआ था कोई मेरे तरह का कोई व्यू आएगा जो आके बोल देगा कि जी हाँ आज ही पहुंचिए, नई मारुति गाड़ी लीजिए. ये जब आपको हंसी आ रही है अभी, तो क्या ऑडियंस नहीं, तो क्या ऑडियंस हंस नहीं रही हो? ये इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है? मैं हर दिन जो भी एड्स करता हूं सब में एक चीज होती है, इमोशंस मिस हो चुके हैं. सब कहते हैं एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए. क्यों? क्योंकि हर क्लाइंट को लग रहा है कि मेरा जो एड है वो बाकी सबके एड के पीछे दब ना जाए. अरे भाई वो दब नहीं रहा है, वो रिसीव हो रहा है, वो इंसानी लेवल पे रिसीव हो रहा है. अगर यही स्क्रिप्ट इस तरह से कही जा सकती थी कि अरे क्यों परेशान क्यों लग रहे हो, अरे यार क्या बताऊं मैं गाड़ी से रोज परेशान रहता हूं. अच्छा अरे मेरे दोस्त ने अभी अभी एक नई गाड़ी ली है, तो तुम आज ही जाओ ना, ठीक है. तो उसके बाद एक एमवीओ आ जाए, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी पहुंचिए ना. तो ये कनेक्ट हुआ. नाउ एक आर्टिस्ट, अब ये मैं आपको आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि आर्टिस्ट जब भी रिकॉर्ड करता है तो वो एक कनेक्ट बनाना चाहता है. उसका काम वॉइस ओवर करना नहीं है. वॉइस ओवर हमने इसको नाम दिया हुआ है कि हमें एक वॉइस ओवर चाहिए. उसका मेन काम है कनेक्ट बनाना. मुझे इस लाइन से आपके दिल तक पहुंचना है कि आप खरीदे चाहे ना खरीदे, मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, ताकि वो आपके डिसीजन मेकिंग में आसान कर दे चीजों को. तो ये मेरी एक वो है जो बहस है जो मैं रोज करता हूं, कोशिश करता हूं और रोज हारता हूं. फिलहाल मैं हार रहा हूं इस रेस में, लेकिन ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज लड़ूं और कम से कम कहूं. आज ही अभी मैंने एक एड खत्म किया है जिसमें कि वो एक पिता के ऊपर है, और वो शायद एक आदमियों की कुछ चीजों के ऊपर है कि भाई वो काफी लो फील करते हैं समथिंग, बट देर वॉज अ रिक्वायरमेंट, दे वॉन्टेड मोर एनर्जी. बोले नहीं रुआसा, मतलब थोड़ा ऐसा दुख भरा नहीं, क्योंकि दुख भरा माहौल नहीं चाहिए. अरे तो क्या दुख हमारे समाज में नहीं एग्जिस्ट करता? दिल तक कैसे पहुंचेगी चीज जब तक उसके अंदर मर्म नहीं होगा, जब तक उसके अंदर वो रस नहीं होगा, तब तक कैसे पहुंचेगी वो चीज? आई नो वो हो सकता है पहले 10 सेकंड में ना पहुंचे, लेकिन जब दोबारा एड प्ले होगा तो शायद दूसरी बार में पहुंच जाएगा
वो.
लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोई एड इस तरह से 10 बार प्ले हो रहा है और हाई पिच में प्ले हो रहा है, आज ही पहुंचिए. दूसरा, एड्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स में रेडियोस पर नंबर्स प्ले होना, आपका केवल 20 सेकंड है. उस 20 सेकंड के अंदर भी क्लाइंट इज इंसिस्टिंग कि मेरा नंबर बोला जाए. भाई कौन समझाए कि जब आप और मैं, हम एक दूसरे के साथ आज की तारीख में नंबर ऐसे एक्सचेंज नहीं करते. मैंने अगर आपसे भी पूछा कि आपका नंबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा आप नंबर ले लीजिए, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? व्हाट्सएप कर दीजिए,
कॉन्टैक्ट कार्ड.
मुझे एग्जैक्टली कि मुझे याद नहीं रहेगा. जब हम दो लोग आपस में दोस्त हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ हम नंबर में ये कह रहे हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं सेव कर सकूं, तो जिसे मैं जानता नहीं हूं, जिस प्रोडक्ट को मैं जानता नहीं हूं, जिससे मेरा कनेक्ट नहीं, उस नंबर को आपको लगता है मैं याद रखूंगा? 9955663 क्यों रखूंगा मैं उस नंबर को? तो वो समय जो आपने, कीमती समय जो आपने 5 से 6 सेकंड उसमें बर्बाद किए, क्या उसको स्टोरी टेलिंग में नहीं ऐड कर सकते थे? तीसरा मेरा एक गुरेज होता है इस पर्टिकुलर लाइन से ऐड के अंदर, आज ही अपने नजदीकी स्टोर जाए. ये मैं कम से कम 1,00,000 बार बोल चुका हूं, आज ही जाकर खरीदें या आज ही जाकर नजदीकी स्टोर से लें. मुझे नहीं मालूम, शायद इसके पीछे ये साइकोलॉजी होगी कि कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कॉल टू एक्शन एक हरीनेस का वो ले आता है। लेकिन ये पूरा ऐड हम इसीलिए तो बना रहे थे, 30 सेकंड का ऐड हमने इसीलिए बनाया था कि ताकि आप जल्दी जाएं, उसके बावजूद आपको ये कहना पड़ा नहीं जल्दी जाएं। तो ये चलिए मैं तीसरी बात फिर भी मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि हमें एक अर्जेंसी क्रिएट, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। वो हालांकि मुझे लगता है ये कह के ना की जाए, सेंस ऑफ अर्जेंसी बातों के अंदर ऐसी कर दी जाए कि वो उसके अंदर अर्जेंसी हो जाए कि वो जाए और वो सामान खरीद के लाए। तो आर्टिस्ट के लेवल पे अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो उसका अल्टीमेट मकसद है दिल तक पहुंचना, वो अब चेंज हो चुका है एनर्जेटिक व्यू के फॉर्म में।
मतलब एक हिसाब से मार्केटिंग कंसिडर करते हैं। और आर्टिस्ट के पास क्या होता है ना सर कि इट्स लाइक यू आर प्लेइंग अ रोल, आपको जो डायरेक्टर बोलता है आपको वो करना है, तो वहां पे फिर हम अपने उसमें मतलब आर्टिस्ट अपने इनपुट्स exactly. वगैरह देगा भी तो सुना नहीं जाएगा उसको।
एब्सोल्युटली मैं यही करता हूँ, मैं अगर सामने डायरेक्टर है या जो भी जिसने की भी वो फिल्म है, जब उसने लिखा है तो मैं उसको वैसे ही बोलूंगा जैसे वो चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी एजेंसी चाहती है। और क्योंकि और ये मुझे याद है जब हम 15-20 साल पहले शुरू कर रहे थे, एजेंसीज वर रियली माइंडफुल ऑफ दिस। एजेंसीज आज भी माइंडफुल है, वो आज भी कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लाइंट्स अब इतना डोमिनेट करते हैं कि शायद उनकी बात अनसुनी हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं, बिकॉज उनका एक आप एजेंसी में बैठे हुए एक कॉपीराइटर की कहानी सोचिए ना, वो क्या है, वो क्यों आया है इस फील्ड में, क्यों आया है, वो भी कहानियां लिखना चाहता है, वो भी आपके दिल तक बात पहुंचाना चाहता है। वो अगर आप उससे ये भी बोलेंगे ना कि मुझे ये वॉशिंग पाउडर का ऐड करना है, तो उसमें भी वो पोएट्री लिख देगा और वो उसमें भी वो आपके दिल तक पहुंचाने वाली बात कह देगा। अब उसने इतनी मेहनत से लिखी है, आपने कहा नहीं पहली चीज तो 10 सेकंड में कर दो, और वो 10 सेकंड के लिए कहानी लिखेगा फिर, ठीक है
True.
उसमें भी वो कहानी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वही वहां पर कुछ मार्केट फोर्सेस आ जाती है, मार्केट फोर्सेज में सेल्स ड्रिवन इतनी चीज है। एंड हियर आई डोंट मीन टू ब्लेम एनीवन, उनकी होंगी कुछ ना कुछ तो फीडबैक उनको भी आया होगा, इसी वजह से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है आपकी पूरी क्राफ्ट अफेक्ट होती है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप यही होता है ना, अभी वेस्ट में हॉलीवुड में अगर हम जो कोचेस से बात करते हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं, जितने भी कोचेस हैं, जो भी सबसे आप बात करें, उनका यही है कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सामने टीजी के साथ रेजोनेट होना चाहिए, जो सामने टीजी है। लेकिन वो जो टीजी है वह आप तो चिल्ला रहे हो, क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो रेडियो इज गोइंग आउट टू सो मेनी पीपल। नो, इट इज गोइंग टू वन पर्सन, देयर इज वन पर्सन, मे बी अ हस्बैंड वाइफ, मे बी देयर किड, और मे बी अ फैमिली, दैट्स इट। इतने ही लोग उस रेडियो को सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर हम क्यों चीख रहे हैं उसको, क्यों इतनी आवाज और इतनी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, जब वो काम आराम से हो सकता है। कितनी अच्छी कहानी 30 सेकंड और 10-20 सेकंड में, 10 सेकंड में बहुत अच्छी लिखते हैं वो लोग कहानी, और वो लिखना जानते हैं, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें करने दीजिए अपना काम। लेकिन वही नहीं, स्ट्रेट कम्युनिकेशन आते ही और उससे पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो हिल जाता है। तो हम सिर्फ वॉइस एक्टर्स नहीं है, वॉइस एक्टर सिर्फ ये नहीं है कि वॉइस आर्टिस्ट है कि ये कहना है और बस एनर्जी में बोल देना, वो बोलना तो आता है, बोलना तो जानते हैं, लेकिन क्यों, जब वो बात ऐसे बोली जा सकती है कि आपके आपके साथ रेजोनेट कर सके।
तो यहाँ सर यहाँ पे वही अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, चाहे आपने बात की एनर्जी हो, चाहे वो मॉड्यूलेशन हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, जहाँ जैसी मर्जी। आजकल तो जॉनरास भी इतने सारे हो गए, ऑडियो बुक्स का दौर आ गया, मतलब पिछले 5-10 सालों से ऑडियो बुक्स हो गया, पॉडकास्ट जैसे कॉन्वर्सेशनल हो गया, वो काफी
हाँ। ऑडियो बुक्स में मैं कहूँगा मेरी नजर में पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछें, ऑडियो बुक्स हमारी विधा का को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, करना उनको रिकॉर्ड करना अपने आप में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक उस दौर में जहां आप 30 सेकंड या आजकल जो चलन है कि आप किसी का भी ध्यान एक मिनट तक बांध के रखना है आपको, और रखना मुश्किल है, ऐसे में आप 7 घंटे की ऑडियो बुक करते हैं, 12-12 घंटे की, मैंने 20 घंटे की भी ऑडियो बुक की है। तो इतनी लंबी ऑडियो बुक्स करना, तो ये तो करना हुआ, दूसरा सुनने वाला, कि आप उसका ध्यान बांध सको, क्योंकि अपना वो बहुत कीमती समय में उसको सुन रहा होगा, या तो वो अपने ऑफिस से घर जा रहा है उस वक्त वो सुन रहा है, या वो पार्क में घूम रहा है तब वो कर रहा है तब सुन रहा है, तो उसके लिए वो उसका बड़ा मी टाइम है उस टाइम में। टू डू दैट, टू परफॉर्म दैट इज वेरी वेरी, टू माई माइंड इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन एंड रिक्वायर्स एन इनक्रेडिबल क्राफ्ट। मैंने अमीश की बुक की थी, अमीश ने जो ट्रिलिजी लिखी है हिंदी में, रामचंद्र सीरीज उनकी, सीता जी और रावण और राम जी के ऊपर जो तीनों हमने की थी, और मैं बता नहीं सकता कि उसमें जो मज़ा आया मुझे, और क्योंकि वो एक ही जगह पर आप मंथरा भी प्ले कर रहे हो, मंथरा की बेटी भी प्ले कर रहे हो, आप राम भी प्ले कर रहे हो, आप लक्ष्मण भी प्ले कर रहे हो, आप भरत भी प्ले कर रहे हो, क्योंकि और आपको ये भी दिखाना है, आपको अपनी आवाज में बहुत बारीकी से ये लाना है कि ऐसा लगे कि ये राम जी ने बोला होगा, हालांकि लाइन ऐसे एंड होती है, और राम जी ने कहा या राम ने बोला, तो लक्ष्मण ने कहा, तो लक्ष्मण का किरदार कैसा है, तो भरत का किरदार कैसा है, वो किरदार को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लेना, पहले मेंटल नोट्स बना लीजिए और कर लीजिए, और उसके बाद उसको परफॉर्म करना, आई थिंक
चैलेंजिंग,
इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स, एंड लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, और ये मैं अगेन इंडस्ट्री में बोलता हूं कि इस कहीं ऐसा ना हो कि अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस लेवल पे रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बस करवाए जा रहे हैं खूब, क्योंकि लोग कंटेंट सुनना चाहते हैं, हर चीज कंटेंट बन चुकी है, तो लोग सुन रहे हैं बहुत तेजी से, तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करवाओ, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करें, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सा उनको सब्र। मैं जो ऑडियो बुक प्रोड्यूसर्स, जो जितनी भी ऑडिबल्स वगैरह हैं एंड कुकू, उन लोगों को थोड़ा सा ये देखें कि क्वालिटी किस तरह से जा रही है, ताकि ये लॉन्जेविटी में रह सके, लंबे समय तक रह सके।
एब्सोल्युटली सर, जैसे आपने अटेंशन स्पैन की बात करी, उसमें भी जो अटेंशन स्पैन की जो गुंजाइश है वो काफी काम जो है वो शॉर्ट्स और रील्स ने का बेड़ा कर रखी है, मतलब मैं नहीं कहूँगा बेड़ा कर रखी है, ये देखते हैं, मैं भी शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ देखता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स अटेंशन स्पैन क्योंकि लोग आदि हो चुके हैं कि अच्छा 60 सेकेंड का कॉन्टेंट है, वो घुमाते जाते रील स्वाइप करते जाते हैं, तो उसमें जितना मतलब होता है ना, जिसमें जितना आप दाल में तड़का लगाओगे वो तड़का लगाने वाली बात है जो आपने कही है कि ऑडियंस,
मतलब मैं तो बिल्कुल रील्स को ब्लेम नहीं करता, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है,
इंटरेस्टिंग
एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत कुछ अपना सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर है। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे उसमें वो ऑफ रहता है, और जब मुझे जाना होता है तो मैं पूछता हूँ इंस्टा से, और इंस्टा कहता है ओके 1 मिनट 15 मिनट्स या होल डे, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 15 मिनट देखना है, तो वो भी एक स्क्रीन है मेरे लिए, तो मैं थोड़ी देर कंज्यूम करता हूँ उसको जब तक करना चाहता हूँ, एंड देन एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो चुका है कि जिस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं उसी तरह का कंटेंट वो आपको दिखाता जाता है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम, इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग मीडियम नाउ,
यस,
एंड आई थिंक एडवर्टाइजर्स शुड एक्सप्लोर दिस इवन मोर। वो लोग वॉइस एक्टर्स यूज कर रहे हैं, आई हैव रिकॉर्डेड सो मेनी थिंग्स फॉर इंस्टा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो लोग हमसे रिकॉर्डिंग कराते हैं उसके लिए, एंड सो मेरे नज़र में तो एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल है वो, अगर अच्छी कहानियाँ कही जाएं, और यहाँ पर अब आपको 30 सेकंड की वो भी नहीं है, आप 50 भी जा सकते हैं, शायद रील्स का 60 सेकंड्स होता है,
बड़ा है ड्यूरेशन, वो
बड़ा बड़ा ड्यूरेशन
एक्सटेंड करते हैं,
एक्सटेंड कर सकते हैं आप, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल, जिसको अभी भी शायद हमने बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं किया है. तो वॉइस एक्टर्स के लिए इट्स अ ग्रेट टाइम. आई मीन दे शुड दे आई होप दे आर लिसनिंग एंड दे शुड यूज द वॉइस एक्टर्स इन दिस.
कितनी वैरायटी हो गई है, इतने रील्स हो गया, जैसे पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, थैंक्स टू द डिजिटल एज. सर मैं एक चीज पूछनी भूल गया, मेरे जहन में था जो आप वॉइस प्रोजेक्ट की जो आप बता रहे थे, वो एक एग्जैक्टली क्या एक कम्युनिटी है और इज इट अ काइंड ऑफ मतलब एक इंस्टीट्यूशन है? मैं रह गया मेरे
या सो इंस्टीट्यूशन वी डोंट लाइक टू कॉल इट, बट इट हैज सम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड इट हैज अ प्रॉपर कोर्स वेयर वी करंटली वी हैव लाइक अ 3 month kind of a thing, people who are really interested. So we kind of leave out a webinar. So webinar mein, yeah, so webinar mein hum ek aisa conduct karte hain ki jahan par hum sabhi cheeze industry ke bare mein batate hain. Ye kuch aisa hi hai, ek tarah ka podcast jaise aap samajh lo, kyunki isme Shubh aur main hote hain aur hum industry ki jo bhi barikiyan hoti hain wo hum logo tak pahunchate hain. Aur क्योंकि ऐसे हमें हमारे पास बहुत सवाल आते हैं जहां पर लोग कहते हैं नहीं हमें थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन चाहिए. तो फॉर देम वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ मॉड्यूल जिसमें कि हम एंड वो ज्यादातर माइंडसेट से रिलेटेड है, क्योंकि लोग ये चीज नहीं समझते हैं. लोगों को ये लगता है कि बस वॉइस ओवर ऐसा है कि हमें कुछ टूल्स दे दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दो, हम वॉइस को कैसे पिचअप कर दें, प्रोजेक्शंस कैसे कर दें, बस ये हमें बता दो. बट यू आर नाउ इन दिस प्रोफेशन एंड यू अंडरस्टैंड कि माइंडसेट एंड ऑल द थिंग्स अराउंड वॉइस ओवर्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट दिस. ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन आप फेलियर से कैसे पार पाएंगे, डिसिप्लिन कैसे लेके आएंगे, क्लाइंट के साथ रैपो कैसे बनाएंगे,
और सर मल्टीटास्किंग,
मल्टीटास्किंग एग्जैक्टली मल्टीटास्किंग आप कैसे करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें करें और उसमें भी आपको ये समय निकालना है. और अगर आज आपका वॉइस ओवर नहीं आया तो नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने लिए खाली प्रैक्टिस करनी. दो दिन अगर आपके पास कोई वॉइस ओवर नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपको आपने किसी ने बड़ी मेहनत से आपने रिकॉर्ड किया, किसी ने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया, एक्चुअली क्लाइंट ने किसी और को ले लिया, उस रिजेक्शन से आप कैसे पार पाएंगे, कैसे उससे डील करें. क्लाइंट आपको बोल रहा है या आपको कोई कह रहा है कि नहीं मुझे आवाज ऐसी ऐसी करके चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, कैसे उससे डील करें, आपके क्या सवाल होने चाहिए लोगों से. तो उसको डिसाइफर करने के लिए वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड अ मॉड्यूल एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड देर आर ऑल्सो शॉर्ट मॉड्यूल्स which are specifically designed for audiobooks, for these ऐसे अलग अलग वो होंगे जो बहुत specifically, and there is one that we're coming out with which is for especially for YouTubers. If you want to be a YouTuber, if you want to be an Instagrammer, there has to be something very very unique tailored to your. So what are the जैसे आप आपने लिए कहते हैं कि भाई माइक ले रहा हूँ, कितने लोग माइक अच्छा यूज करते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मैं अपने ब्लॉग के लिए अच्छा माइक यूज कर लेता. तो ऐसे ही अगर आप तो फिर भी एक ट्रेन वॉइस एक्टर, अगर आप ना होते, अगर आपको पता चलता कि नहीं, अगर आप थोड़े से न्यूआंसेस और इसमें अपनी भाषा को थोड़ा सा इसमें और सफाई कर ले आए, थोड़ी सी और ये प्रैक्टिस कर ले, तो आपके लिए कितना रिफाइनमेंट हो सकती है, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी बढ़ सकती है. सो वी आर काइंड ऑफ डिवेलपिंग सम स्मॉल मॉड्यूल्स based on that.
तो सर इसके बारे में
they should be out very very soon.
तो सर इसके बारे में कह सकते हैं जो जानकारी इनके in terms of website या फिर कोई Instagram का handle है ये.
Yeah. So we have it's called TVP the Voice Project. नाम है इसका the Voice Project and the Voice Project हमारा WhatsApp group भी है. So that's it's very democratic. We have mentors जो समय समय पर उसकी that's all free. That's only for voice actors, serious voice actors. If you want to be a part of anybody who is into voice acting, can actually be a part of that. So there is now it's an ecosystem where we are just increasing the list of mentors there who can come and share their experiences which is so beneficial for the people who are just starting out and believe me like people who are starting out It's not that people who are starting out in their 20s or 30s. We have people who are starting out who are in their 30s or then 40s, and we have somebody who's in their 60s. Mm. So we have all kinds of people who want to learn, because it's not just in front of the mic. It's also your interpersonal skill. आपको वैसे भी enhance करती है. तो अगर आपको छोटी-छोटी बारीकियाँ पता चल जाती हैं जिन पर आप काम कर लेते हैं, तो एक level से आप next level जा सकते हैं.
Next level जा सकते हैं.
So we've created certain modules of that sort. So so yes, there is a website. There is a it's called The Voice Project. It's
dot com. The Voice Project dot com.
No, we didn't get the dot com. We have
dot in.
The dot in. Yes.
Okay.
We have the dot in and dot co dot in as well. So okay. And then we have the Facebook page. We have so I think Insta is a great. We have the YouTube channel. And we also it's a great way to stay connected. WhatsApp is actually the quickest way to actually be connected. So we हम लोग regularly बीच बीच में कभी Facebook पर कोई videos डालते हैं, तो हम उसमें वो chat का एक link paste करते हैं, ताकि if there's somebody who and we make sure that it is only for the voice artists. वो nobody else is entertained. Very serious discussion only about voiceover. So voicing, we also get to learn a lot. Basically, हमें बहुत सीखने को मिलता है कि क्या लोगों की approach है, कैसे I mean, इस पिछले एक डेढ़ साल में हमने इतना कुछ सीखा है लोगों से और इस तरह से. In fact, we had people who joined from Bangladesh, from Pakistan, from Sri Lanka. They're all a part of this.
Nice. सर डेफिनेटली लर्निंग तो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए इसमें. और दूसरा, जिस तरह के दौर में हमने दस्तक दिया है, अभी डिजिटल दौर तो शुरू हो ही चुका था, अब तो जिस दौर में जिसकी शुरुआत हो चुकी है 2020 से, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना, डाइवर्सिफाई करना, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सीखना, नई चीज़ें सीखना, अडाप्ट करना. क्योंकि आप पहले तो कंपटीशन तो हमेशा सदा आज आगे भी रहेगा, लेकिन अब सामने वाले के पास क्लाइंट जिसको भी काम करवाना, उसके पास एक चॉइस है कि आपको, आप सिर्फ इंसानों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप अब मशीनों से भी कम्पीट कर रहे हो कहीं ना कहीं हिसाब से. चलो कोई लिमिटेशन कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता, बट वो अभी तो उसका स्टेज है, अभी तो वो हॉस्पिटल से जन्मा हुआ बच्चा है जो भी शायद मुझे लग रहा है 5-10 साल में और इसमें ऑफकोर्स ये बेहतर ही होने वाला है सर, जहां तक मैं समझ सकता हूँ.
एंड वो तो स्मार्ट होगा ही होगा, बट मेरा हमेशा से मानना है कि शायद जब क्लाइंट अपनी कहानियां कहता है, और लोगों ने इनके अलग अलग टर्म्स रखे हैं, जिन्हें लोग रेडियो स्पॉट्स कहते हैं, टीवीसीज कहते हैं, और आजकल के डिजिटल लिंगों में इन्हें एसेट्स कहा जाता है.
एसेट्स, यस.
लेकिन मुझे लगता है वो अल्टीमेटली हैं तो कहानियां ही, और कोई भी नहीं चाहता कि वो मेरी कहानी एक रोबोट कहे. हर इंसान चाहता है कि मेरी कहानी एक इंसान कहे, क्योंकि मतलब AI के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन
अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा
उसके लिए, अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा. एंड आई थिंक वी नीड टू डू इट एज वेल, एंड वी नीड टू सेंसिटाइज पीपल एज वेल. बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लाइंट नहीं पसंद करता, फ्रेंकली क्लाइंट राइट नाउ जस्ट डजंट वांट दैट, बिकॉज़ ही सेज ही फील्स अगर आपने कहीं उनको दे दिया तो दे फील चीटेड. उनको ऐसा लगता है कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, कि आपने इसमें तो मुझे AI वॉइस लगा दिया. तो यस, डेफिनेटली हमारे लिए ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए एक स्टेप अप वो है कि दे स्टेप अप, दे राइज टू दिस ओकेजन वेयर दे इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड लुक इनवर्ड्स एंड आर मोर सेंसिटिव टू व्हाट द फिल्म मेकर वांट्स. जो फिल्म है या जो भी AV है वो किस तरह से बने, उसमें जितना ह्यूमन एलिमेंट हो सके. और ये अगेन इट ब्रिंग्स मी बैक टू दैट सेम पॉइंट जैसे मैं कह रहा था कि जो कनेक्ट है ना, ये आप और मेरा जो कनेक्ट है वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब वो एक ह्यूमन लेवल पे बात कही जाएगी, ना कि ये होगी आज पाइए आप 30,000 रुपए में ये वाली गाड़ी, 60,000 रुपए ऑफ हो गए. अगर मैं ये रेडियो में सुन रहा हूँ और अपने घर में सुन रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि आप मेरे कान में चीख क्यों रहे हो यार.
राइट.
या
सर, बिल्कुल सही कहा. और बाकी सर ये तो ऐसा हो रहा है कि एक तो दो चीजें हैं, एक तो आपकी जो आवाज मुझे, मैं सुन रहा हूँ ना जो बेस जिस तरह से आप कह रहे, तो मन करता है चर्चा चलती रहे. बट ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि और आगे हम कभी ऐसा और कभी प्लान करें फ्यूचर में. सो फाइनली सर, थैंक यू सो मच ऑन कमिंग ऑन वॉइस ओवर पर चर्चा. आपसे
आई एम सो डिलाइटेड एंड थैंक यू सो मच. एंड अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हुई. मुझे आपकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. एंड होना चाहिए कि कोई आपके 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 ऊपर भी पॉडकास्ट करे, बिकॉज यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप यू हैव रियली टोल्ड दिस स्टोरी इन सम ऑर द अदर वे.
अभी नहीं कही सर, कही नहीं, बहुत कम. मैंने एक जगह पे हमारे एक वॉइस आर्टिस्ट है, सीनियर वॉइस आर्टिस्ट है निशमा मैम, उनका एक पॉडकास्ट है नावा का रेडियो, वहां पे मैं गया था. वहां पे तो एक मतलब जैसे एक हमारी बातचीत हुई थी वॉइस ओवर के बारे में, बट एज सच मैं कहीं अभी एज एन इंटरव्यू मेरा अभी तक, अभी तो सर बहुत कुछ करना बाकी है, तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे कहीं जाना भी चाहूंगा. मैं अभी बहुत कुछ सोच रखा है.
लेकिन मेरा जस्ट बिफोर आई थिंक यू आर जस्ट अबाउट टू वाइंड इट अप, एंड आई वुड स्टिल से जो लोग नए हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं, बेशक डिजिटल आ चुका है, आप अपने घर से करिए, अपने घर से कंफर्टेबल हो सकते हैं तो कीजिए, लेकिन जब भी मौका मिले स्टूडियोज जाइए, लोगों से मिलिए, क्योंकि आपको मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे मैंने सबसे ज़्यादा अपने इन्हीं जो जो हमारे साउंड इंजीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, मैंने उन्हीं से सबसे ज़्यादा सीखा. उनसे बात करके उनकी एक बड़ी पारखी नज़र होती है. जब वो आपसे कहते हैं ना कि ज़रा थोड़ा सा ऊँचा बोलिए, यहाँ थोड़ा सा नीचा बोलिए, वो बहुत गहरी बात होती है.
वो सालों से सुनते आ रहे हैं और वो सालों से उनका तजुर्बा भी है, और साथ में जो एक स्टूडियो का एक एम्बियंस होता है, आप जब देखते हैं अलग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो एक अलग ही चीज है. नो डाउट घर से आप डिलीवर जरूर कर सकते हो, बट ये एक्सपोजर बहुत जरूरी है. पूरी मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं. बिल्कुल, मैं
मतलब आप कहीं भी हो, जब भी मौका मिले, और इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है. मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर आप कहीं जाते हैं, आप कहें कि अरे मुझे तो कोई बुलाता नहीं है, कोई बात नहीं ना, स्टूडियोज डोंट वो आज भी बहुत इंडिया के हिसाब से they're not very expensive. Yes. आप बुक कीजिए और एक घंटे की अपनी रिकॉर्डिंग करने वहां चले जाइए. आप उनसे सीखेंगे ना, हो सकता है वही आपको बता दे. आप अपने घर में बैठ रहे हैं, और इससे अच्छा तो ये है ना कि आप थोड़ी देर के लिए उनसे जाकर के मिलाएं, और आप उनसे कहें कि मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके यहाँ, मेरी मुझे 15-20 मिनट का एक काम मिला है, तो टेक द मनी व्हाटएवर यू हैव वांट टू चार्ज, बट मैं आपके सामने कर भी लूंगा और आप मुझे देख भी लीजिएगा. सो यू ऑल्सो डिवेलप अ रैपो, यू ऑल्सो डिवेलप अ कनेक्ट, एंड यू ऑल्सो गेट अ सेकंड ओपिनियन.
सर बिल्कुल सही कहा, एंड इस बात पे बस ये होता है कि जैसे मैंने कहा ह्यूमन इंटरवेंशन और एक दूसरे से मिलना, क्योंकि कल आने वाले समय में जहाँ मुझे लगता है ना रोबोटिक्स इज गोना सिंक्रोनाइज विद AI, तो कहीं ऐसा भी होगा कि वो भी आपको फीडबैक दे सकता है, तो यहाँ तक भी बात पहुंच जाएगी कि अच्छा स्टूडियो जाने मतलब अपने काम में बात पहुंचा रहा हूँ ये.
देखो वो फीडबैक दे वो ठीक है, लेकिन उसका फीडबैक मानने के लिए आप बाध्य हो, ये प्रॉब्लम होगी. वो फीडबैक दे दैट इज परफेक्टली फाइन, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो ये कहे कि नहीं ये काम ऐसे ही होगा और आप उसके लिए बाध्य हैं, देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ iRobot. So in fact, thankfully, I also actually dubbed iRobot. I dubbed Will Smith.
Oh.
Yeah, nice. I dubbed the character of Will Smith.
Wow.
So wo ek hangover hai mere aaj tak dimag mein ki robots kya kar sakte hain.
ये तो बचपन में सोचते थे एक फिक्शन है, बट तो पता नहीं ऐसे लग रहा है कुछ 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 हद तक एटलीस्ट रियलिटी बन रही है. सो एनीवेज सर, फाइनली थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और so भी हम काफी चर्चा ऐसे आगे रखेंगे हम.
मैं सो ग्लैड आपने तो, बल्कि मैं कहूंगा आपने मुझे मेरी भड़ास निकालने का मौका दिया और इतनी कैंडिडली बात करने का मौका दिया. मैं इतनी सारी बातें, वरना लोग खुल के एजेंसीज क्लाइंट्स इन रिश्तों पर बात करते नहीं है. आई एम वेरी कैंडिड, आई लाइक टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज सभी को बदलना है, थोड़ा थोड़ा बदलाव चीजों में जरूरी है.
ऑफ कोर्स बदलाव,
अगर हमें बेहतर बनना है, कुछ अच्छा करना है,
वो तो कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स. यस एब्सोल्युटली ट्रू. सो फाइनली सर, हम लोग जरूर मिलेंगे, और जो भी लिंक्स वगैरह, मतलब मुझे लगता है कि जो लोग जानना चाहते हैं इस कम्युनिटी के बारे में, जो आपके जो ऑनलाइन वेब, जो भी काइंड ऑफ ऑल द वेब एसेट्स एंड ऑल वेब प्रॉपर्टीज इन फैक्ट, तो मैं ज़रूर चाहूँगा अपनी एपिसोड्स वगैरह में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र करूँ, ताकि जिन लोगों को इस बारे में जानकारी
चाहिए. दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट.
ओके सर.
या